تفسير سورة الزخرف آیت نمبر 26 سے 28 تک. ان آیات میں اللہ رب العزت نے تاریخ کی روشنی میں مشرکین کے دعوے کو رد کیا ہے. مشرکین کیا کہتے تھے؟ کہ جو دین شرک ہے یہ ان کے باپ دادا کی وراثت ہے. اللہ رب العزت بتا رہے ہیں کہ اصل جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. انہوں نے تو شرک سے برات کا اعلان کیا تھا. انہوں نے تو کہا تھا اننی برا مما تعبدون. تو ان کا جو دین تھا وہ تو دین ابراہیمی تھا, توحید کا دین تھا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں لا کر بسایا تھا. اعلان ہجرت کی جو مقدس روایت ہے وہ انہوں نے اپنی اولاد میں چھوڑی تھی. انہوں نے توحید کا کلمہ اپنی اولاد میں چھوڑا تھا. تو اہل مکہ, تم یہ کیسے کہتے ہو کہ شرک جو ہے وہ تمہارے باپ دادا کی وراثت ہے؟ تو آیت نمبر 26 سے لے کر 28 تک اللہ رب العزت نے اس کا جواب دیا ہے. وَإِذْ قَالَ, فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ, اور جب کہا اِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ, ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے, یاد کرو وقت جبکہ ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے کہا تھا, وہ قوم ہی اور اپنی قوم سے کہا تھا. اب آپ دیکھیں اللہ رب العزت رول ماڈل کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو متعارف کروا رہے ہیں کہ یہ ہیں تمہارے باپ دادا, یہ تھے تمہارے جد امجد, اور یہ تھے ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام. تو یہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے کہ انہوں نے اپنے والد اور اپنی قوم سے کہا تھا اننی برا مما تعبدون, کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے, میں ان سے بری ذمہ ہوں. اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ہے وہ برات کا اعلان کیا گیا ہے. تو برا ان جو ہے اس کے کیا معنی ہیں؟ برا ان جو ہے یہ لفظ آپ پہلے بھی پڑھ چکی ہیں, اور بارا حمزہ اس کا مطلب ہے بیزار ہونا, الگ ہونا. اور سورت برات, سورت توبہ کا دوسرا نام ہے نا, اس میں شرک سے جو ہے وہ برات کا اعلان کیا گیا ہے. تو یہاں پہ بھی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اپنے والد کو بھی اور اپنی قوم سے بھی کہ تم جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں, اِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ, میرا تعلق تو صرف اس سے ہے, الَّذِي جس نے فَطَرَنِي مجھ کو پیدا کیا یعنی تراش خراش کر مجھے خوبصورت بنایا, فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ, وہی میری رہنمائی کرے گا. اب آپ دیکھیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف اپنا عقیدہ ہی نہیں بتاتے, دلیل بھی دیتے ہیں کہ میرا رب میرا خالق ہے, اور صرف اس نے میرے جسم کو نہیں بنایا بلکہ جسم کو بنانے کے ساتھ اس نے میری روح کی ہدایت کا بھی انتظام کیا ہے. وہی پیدا کرنے والا ہے اور وہی انسان کی صحیح رہنمائی کرتا بھی ہے اور کر سکتا ہے. فَإِنَّهُ سَيَهْدِينَ, پس عنقریب وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا. نون کے بعد یا تھا حرف علت جو کہ گر چکا ہے. آپ کو یہاں پہ یا جو ہے وہ نظر بھی نہیں آ رہا نا. وَجَعَلَهَا كَلِمَةً بَاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ, اور ابراہیم علیہ السلام یہی کلمہ اپنے پیچھے اپنی اولاد میں چھوڑ گیا تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. وَجَعَلَهَا, وَجَعَلَهَا کے معنی ہیں کہ اور کیا اس نے اس کو, اور باقی رکھا اس کو کلمتن, یہ کلمہ کون سے کلمہ مراد ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کلمہ توحید, کلمہ لا الہ الا اللہ. اس کی وصیت حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اولاد کو بھی دے گئے. اپنی اولاد کو انہوں نے یہی وصیت کی. آپ نے سورۃ البقرہ آیت 132 کو پڑھا تھا, آپ اس کو یہاں پہ دلیل میں لکھ سکتی ہیں. وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ بَنِيهِ وَيَعْقُوبُ, اور وہاں پہ انہوں نے کیا وصیت کی تھی؟ ایک اللہ کی بندگی. وجعلها کلمتم باقیتن فی عقبہ. تو اس سے یہ بات پتہ چلتی ہے کہ ابراہیم علیہ السلام جو ہے اپنی اولاد کو کس چیز کی انہوں نے وصیت کی تھی؟ صرف ایک اللہ کی عبادت کرنا, یہ تھی ان کی ویلیوز. اب کفار قریش جو ہیں وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے اسلاف شرک کرتے رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں, ابراہیم اور اسماعیل کی تم اولاد ہو اور وہ توحید پرست تھے, تم نے تو بت پرست قوموں سے شرک کو سیکھا ہے. تو عقبہ ہی اس کے معنی تو آپ کو یہ آتے ہیں نا, یعنی ہم عقبہ ہی اس کا روٹ ہے عین قاف با, اور جیسے پاؤں کی ایڑی کو کہا جاتا ہے نا عین قاف با, اور پاؤں کا پچھلا حصہ اس کی ایڑی ہوتا ہے, اسی سے پیچھے آنے والوں کو کہتے ہیں. جیسے عاقبت بھی لفظ استعمال ہوتا ہے, کیونکہ انسان جو عمل کرتا ہے پھر اس کا انجام بعد میں پتہ چلتا ہے. اسی طرح اولاد کو بھی کہا جاتا ہے عقب, کیونکہ والدین کے بعد اولاد آتی ہے. تو ابراہیم علیہ السلام کلمہ توحید اپنے پیچھے اولاد میں چھوڑ گیا لعلہم یرجعون, تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں. بل متعتھا اولائی, پھر فرمایا بلکہ مال دیا میں نے ہا اولائی ان لوگوں کو, و آبا اہم اور ان کے جو ہے وہ ابا و اجداد کو, باپ دادا کو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ جب یہ لوگ شرک کر رہے تھے, دوسروں کی بندگی کر رہے تھے, تو میں نے عذاب کے کوڑے برسا کر ان کو ختم تو نہیں کیا تھا, میں نے عذاب کی آندھی چلا کر اور طوفان جو ہے وہ بھرپا کر کے ان کو صفحہ ہستی سے مٹایا تو نہیں تھا. بل متعتو, بلکہ میں نے متا دی, میں نے خوب مال و دولت دیا. ہاؤلائی ان لوگوں کو, ان شرک کرنے والوں کو, وہ آباہم اور ان کے باپ دادا کو, میں دنیا کا متاع حیات دیتا رہا. حتی جاءہم الحق, یہاں تک کہ جب حق ان کے پاس آ گیا, اور کیا حق آیا؟ قرآن ان کے پاس آیا. ورسول مبین, اور کھول کھول کر بیان کرنے والا رسول ان کے پاس آ گیا, ایسا رسول جس کی نبوت سے پہلے کی زندگی اور بعد کی زندگی گواہی دے رہی تھی کہ وہ یقیناً اللہ کا رسول ہے. تو یہاں پہ مبین جو ہے وہ رسول کی صفت ہے کہ وہ اللہ کی آیات اور اللہ کی باتوں کو کھول کھول کر بیان کرنے والا تھا, کوئی شک اور شبہ نہیں تھا. ولما جاءہم الحق, اور جب حق ان کے پاس آ گیا, جب قرآن ان کے پاس آ گیا, جب رسول ان کے پاس آ گیا, تو انہوں نے قرآن کو کیا کہا؟ قالوا ھذا سحر, تو انہوں نے کہہ دیا کہ یہ تو جادو ہے. اور رسول کو کیا کہا؟ کہ یہ جادوگر ہے. وَإِنَّا بِهِ كَافِرُونَ, اور ہم تو اس کو ماننے سے انکار کرتے ہیں. وقالوا, اور وہ کہتے ہیں, یہ کون تھے جو کہتے تھے؟ یہ اہل مکہ کہتے تھے, طائف والے بھی, طائف کے سردار بھی اور مکہ کے سردار بھی. وہ کہتے تھے لولا نزل ھذا القرآن علی رجل, کہ یہ قرآن دونوں شہروں کے کسی بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا. لولا نزلہ, کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ آپ کو پتہ ہے نا کہ نزلہ جو ہے اس کے معنی ہے نازل کرنا, اور یہ جو ہے یہ ماضی مجھول ہے کہ کیوں نہیں نازل کیا گیا یہ قرآن علی رجلن, رجل آدمی پر, من القریہ تینی, دو بستیوں میں سے. قریہ واحد کو کہتے ہیں, اور قریہ تین جو ہے یہ دو بستیوں کے لیے استعمال کیا جاتا ہے, اور یہاں پہ مکہ کی اور طائف کی وادی جو ہے وہ مراد ہے. عظیم, عظیم جو ہے اس کے معنی ہے بڑے, یعنی یہ قرآن ان دو بستیوں کے کسی بڑے آدمیوں میں سے کسی پر کیوں نہیں نازل کیا گیا؟ تو اہل مکہ جو ہیں ان کو ایک اعتراض جو ہے وہ اس بات پر تھا کہ اگر اللہ نے کسی کو نبی بنانا ہی تھا تو کسی سردار کو کیوں نہیں بنایا, کسی امیر کبیر کو کیوں نہیں بنایا. وہ یہ سمجھتے تھے کہ دولت جو ہے وہ ہماری باندی ہے اور ہم بہت امیر ہیں, تو اس کا مطلب ہے اللہ ہم سے خوش ہے, اور نبی بنانا بھی اس بات کی علامت ہے کہ وہ ہمیں ملنی چاہیے تھی کیونکہ اللہ ہم سے خوش ہے. اللہ رب العزت ان کے اس رویے پر تبصرہ کرتے ہیں, فرماتے ہیں اہم یقسمون رحمت ربک, کیا تیرے رب کی یہ رحمت ये लोग तकसीम करते हैं। अब यहाँ पर जो है अल्लाह ताला जो है वो कह रहे हैं कि, और यहाँ पे रहमत नेमत के मानी में है, और नेमत भी कौन सी, नबुवत की नेमत। और कहते हैं कि ये जो एतराज़ करने वाले थे, मक्के का वलीद बिन मुगीरा और ताइफ का उरवा बिन मसूद सकफ़ी, और बाज़ ने कुछ और नाम भी लिए हैं, जो कि जाहो मनसब वाले थे, कसीरुल माल थे, अपनी कौम में माने हुए थे, कि कुरान मक्का और ताइफ की बस्तियों में से किसी अजीम शख्सियत पर नाजिल होना चाहिए था। प्यारे रसूल का दामन तो दुनिया की दौलत से महरूम है, खाली है, वो अपनी कौम में सरदारी के लायक नहीं है, वो कहते थे। तो अल्लाह ताला पूछ रहे हैं कि क्या तेरे रब की रहमत, और रहमत से मुराद यहाँ पे नेमत है, और नेमत के मानी नबूवत के हैं, तो क्या तेरे रब की जो नबूवत की नेमत है ये लोग तकसीम करते हैं। नहनु कसमना बैनहुम मईशतहुम फिल हयात दुनिया। अल्लाह रब्बुल इज्जत यहाँ पे जो है वो बता रहे हैं कि ये जो है सिर्फ अल्लाह का काम है। अल्लाह ताला कहते हैं नहनु कसमना, हमने तकसीम किया है, और हम तकसीम करते हैं, और हमने तकसीम किया है बैनहुम इनके दरमियान, मईशतहुम इनकी मईशत, के हम इनके दरमियान जो हैं ज़िंदगी के गुज़र बसर के ज़राए, दुनिया की ज़िंदगी की रोज़ी की तकसीम जो है वो हम करते हैं। मईशतहुम इनकी मईशत, इनकी दुनिया की ज़िंदगी की जो रोज़ी है ना, मईशतहुम फ़िल हयात दुनिया, तो दुनिया की ज़िंदगी में मईशत जो है, जो ज़िंदगी गुजारने के ज़राए हैं, वसाइल हैं, वो हम तकसीम करते हैं। तो क्यों अल्लाह ताला तकसीम करते हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला अलीम है, खबीर हैं, और उन्हें पता है कि हर शख्स के हालात क्या हैं, और इंसानों में से नबूवत का ताज किसके सर पर रखना है, और अपनी वही और रसालत से किसको नवाजना है। तो दुनिया का रिस्क भी अल्लाह तकसीम करता है, और नबी किसको बनाना था ये भी अल्लाह ही का फैसला है, जिसको चाहे अपनी नबूवत के लिए मुंतखब कर ले। और अल्लाह ताला ने जब नबी बनाने का फैसला किया तो अल्लाह ताला ने एक यतीम को मुंतखब किया, वो जिसने बकरियां चराकर जवानी गुजार दी, वो जिसने बकरियां चराकर चरवाहा बनकर जवानी गुजारी, और जो जिसके पास गुजर औकात के लिए पैसे भी नहीं थे। तो अल्लाह ताला की मर्ज़ी है कि वो जिसको चाहे अपनी नबूवत के लिए चुन ले। वरफाना बादहुम फौका बादिन दराजात, अल्लाह ताला कहते हैं, और इनमें से कुछ लोगों को कुछ दूसरों पर हमने जो है वो बदरजा फौकियत दी है। फरमाया और एक को दूसरे से बुलंद किया है, एक को दूसरे पर बुलंद दर्जात अता किए हैं, वरफाना और बुलंद किया है हमने, बादहुम फौका बादिन, बाज़ लोगों को बाज़ पर दर्जात दर्जों में, तो हमने बाज़ को बाज़ पर फौकियत दी है। क्यों, क्या वजह है कि अल्लाह ताला किसी को अमीर बनाता है और किसी को गरीब बनाता है, और बाज़ लोगों को बाज़ का मोहताज बनाता है, किसी को माल और मनसब में ज़्यादा देता है, किसी को इल्म और फहम में, किसी को अक्लो शऊर में, और किसी को दुनिया की ज़िंदगी की दूसरी चीज़ों में। क्यों, अब इसको आप हाईलाइट कर लें, लियत्तखिज़ा बादहुम बादन सुखरिया, ये आयत 32 जो सूरत ज़ुख़रुफ़ की है, अब यहाँ पे लियत्तखिज़ा बादहुम बादन सुखरिया, ये इल्लत है, ये वजह है कि क्यों अल्लाह ने बाज़ को बाज़ पर फौकियत दी है, ताकि वो एक दूसरे से खिदमत ले सकें। और यहाँ पे सुखरिया का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है, और सीन खा रा इसका मादा है, इसके मानी है मुसख़र करना, बस में करना, मतहत करना, काम में लगा देना, किसी को काम पर मजबूर करना, और वो अपने फिर बाद में वो ताबे बन जाए, तो सुखरी। तो सुखरी फिर किसे कहते हैं, सुखरी खिदमतगार को कहते हैं, खादिम और मुती को कहते हैं। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि हमने बाज को बाज पर दर्जात बुलंद किए, ताकि वो एक दूसरे से खिदमत ले सकें, वो एक दूसरे के मुती हो सकें। पहली चीज तो अल्लाह ताला ने ये बताया कि रहमत की तकसीम अल्लाह के सपुर्द है, ना के इंसानों के। नेमते बांटना अल्लाह की ये जिम्मेदारी है, ना के इंसानों की। नंबर दो, नबुवत तो बहुत बड़ी चीज है। रही दुनिया की नेमते, तो उसकी तकसीम भी अल्लाह ने लोगों के हवाले नहीं की, वो अल्लाह ने अपने हाथ में रखी है। कोई खूबसूरत है तो कोई बदसूरत, किसी की आवाज बहुत अच्छी है तो किसी की आवाज जो है वो बुरी है। कोई जहीन है और कोई जो है वो कुंद जहन है। कोई अपाहज, अंधा, गूंगा, बहरा पैदा होता है और कोई पूरा सही सालिम, सलीमुल आज़ा, सही जिस्म वाला पैदा होता है। ये कौन करता है? ये अल्लाह ताला करते हैं। फिर अब अल्लाह ताला बता रहे हैं कि ये जो दुनिया की नेमतें भी हैं, तो ये तकसीम भी अल्लाह ताला ने जब अपने हाथ में रखी है, अब आगे बताया जा रहा है कि इसकी वजह क्या है। कि अगर अल्लाह ताला एक ही शख्स को या कुछ ही लोगों को सब कुछ दे देते, तो फिर जो है वो लोग खुदा बन जाते और फिर लोग जो थे वो एक दूसरे के मोहताज ना रहते, फिर लोग एक दूसरे से बेनियाज हो जाते। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर दुनिया में सब बराबर होते तो कोई किसी के काम करने के लिए तैयार ना होता। और जो कमतर और हकीर समझे जाने वाले काम है, वो भी कोई ना करता। तो ये जो इंसानों की ज़रूरत है, ये अल्लाह ताला ने इंसानों के लिए एक दूसरे के अंदर रख दी है, इसलिए हर इंसान दूसरे इंसान का मोहताज है। अमीर भी गरीब का मोहताज है और गरीब भी अमीर का मोहताज है। एक शख्स खा अरबपति करोड़पति क्यों ना हो, करोड़पति और अरबपति क्यों ना हो, लेकिन वो इंसानों की मदद जो है उसके लिए वो दूसरे का मोहताज होता है। तो ये है कि लियत्तखिज़ाबादहुम्बादन सुख्रिया, ताकि ये एक दूसरे की खिदमत ले सकें, ताकि ये एक दूसरे के मुती हो सकें। वरहमत रब्बी का खैरु मिम्मा यजमाउन। मेरी प्यारी बहनों, यहाँ पे जो अल्लाह ताला अपनी रहमत का फिर से जिक्र कर रहे हैं कि और तेरे रब की रहमत उस दौलत से ज़्यादा कीमती है जो इनके रईस सरदार समेट रहे हैं। तो यहाँ पे वरहमत रब्बी का से क्या मुराद है? यहाँ पे इससे मुराद नबुवत है। और तेरे रब की नबुवत खैरुन, ये फिर इसम तफजील है। मैंने आपको बताया था ना कि बाज इसम तफजील ऐसे होते हैं जो कि अफअलु के वजन पर नहीं आते, लेकिन मानी जो है वो ज्याती के देते हैं। खैरुन ज्यादा अच्छी है। तेरे रब की रहमत मुराद नबुवत है, कि तेरे रब की जो नबुवत है वो दुनिया की दौलत से ज्यादा अच्छी है। मिम्मा यजमाउन, जिसे ये दुनिया के सरदार जमा कर रहे हैं, मक्का के और ताइफ के सरदार जिस दौलत को समेट रहे हैं और अपनी सरदारियों पर फख्र और गुरूर कर रहे हैं, चौधरी बने बैठे हैं, सेठ बने बैठे हैं, और उसी वजह से ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हकीर समझ रहे हैं। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दुनिया अल्लाह की नज़र में बड़ी हकीर है, इसकी कोई हैसियत नहीं है। इसीलिए अल्लाह ताला ने अपने नाफरमानों को खूब दिल भर के जो है वो दुनिया की दौलत जो है वो दी है। और नबुवत जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वो अपने पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी है। तो नबुवत की दौलत उस दौलत से कई दर्जे जो है वो ज़्यादा बेहतर है। वलौला अन यकून अन्नासु उम्मतन वाहिदतन, और अगर ये अंदेशा ना होता कि सारे लोग एक ही तरीके के हो जाएंगे, लजअलना लिमन यकफुरु बिर्रहमानी ले बुयूतहिम सुकुफम मिन फिद्दतिन व मआरिज अलैहा यजहरून वले बुयूतहिम अबवाबं व सुरुरन अलैहा यत्तकीउन व ज़ुख़रुफ़ा व इन कुल्लु ज़ालिका लम्मा मताउल हयात दुनिया वल आखिरतु इंदा रब्बिका लिल मुत्तकीन। अब आप देखिए कि प्यारी बहनों, यहाँ पे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं बता रहे हैं, यानी आयत नंबर 29 से लेकर 45 तक, एक तरफ तो ये बताया कि जो मुकज़्ज़बीन हैं, जो मक्का के सरदार हैं या वहाँ जो मुनकिर थे, वो झुटलाते क्यों थे? दौलत की वजह से। झुटलाने का मर्ज़ क्या था, उसकी बीमारी क्या थी? दौलत। नंबर दो, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दौलत इनके लिए फितना बन गई है, लेकिन अल्लाह के यहाँ दौलत का कुछ भी जो है वो मकाम नहीं है। असल कामयाबी जो है वो आखरत की कामयाबी है, ना कि दुनिया दुनिया की दौलत और उसकी सरदारी। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि अल्लाह ताला ने जिसको पसंद किया उसको अपनी नबुवत के लिए चुन लिया, और ये दुनिया की दौलत से बहुत ज़्यादा अच्छी चीज़ है। और अगर ये अंदेशा न होता और के सारे लोग जो हैं वो कुफर की तरफ माइल हो जाएंगे, अन यकून अन्नासु, के हो जाएंगे लोग उम्मतम वाहिदतन, एक उम्मत। मुराद क्या है? अगर इस बात का अंदेशा न होता कि सब लोग जो हैं वो एक ही तरीके के हो जाएंगे, कि माल माल की रग़बत की वजह से लोग दुनिया के तलबगार बनेंगे और अल्लाह की रज़ा और आखरत की तलब को भूल जाएंगे, अगर इस बात का अंदेशा ना होता कि सारे लोग काफिर हो जाएंगे। यहाँ पे उम्मतम वाहिदतन के साथ आप कुफर लिख लें, यानी अगर तमाम लोग एक दीन की तरफ माइल हो जाएंगे, एक तरीके पर हो जाएंगे, और ब्रैकेट में लिखें कुफर, अगर इस बात का अंदेशा ना होता कि सारे लोग कुफर की तरफ माइल हो जाएंगे, लज अल्ला, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि लज अल्ला, तो हम जो है वो बना देते, तो हम बना देते, लिमय यकफरू, उनके लिए जो कुफर करते हैं, तो हम कुफर करने वालों के लिए बना देते जो कुफर करते हैं, बिर्रहमानी रहमान का, तो हम उन तमाम लोगों के लिए जो खुदाए रहमान से कुफर करते हैं, तो हम उनको क्या दुनिया में देते, कितनी दुनिया की दौलत देते। आप ज़रा तसव्वुर करें इस बात का कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मुझे तो कोई परवाह भी नहीं है कि मैं जो है जो कुफर करने वाले हैं, जो मुनकिर हैं, मैं इन लोगों को इतनी दौलत देता, मैं इतना सोना देता, मैं इतनी चांदी देता के ले बयूतेहिम सुकूफन, बैत वाहिद है और बयूत जमा है, तो इनके घरों की छतें मैं बना देता। सुकूफन छत को कहते हैं, सकफ वाहिद है और सुकूफ जो है वो इसकी जमा है, सकफुन वाहिद और सुकूफ जमा, तो मैं इनकी छतों को बना देता, मिन फिद्दतिन, चांदी का। फिद्दा जो है फा द्वाद द्वाद, ये इसम जींस है और चांदी को कहते हैं, तो मैं इनके घरों की छतें बना देता चांदी की। व मआरिजा, ऐन राजीम इसका मादा है, बुलंदी को कहते हैं, मेराज वाहिद है और मआरिज जमा है, सीढ़ियों के लिए इस्तेमाल किया जाता है, और मैं सीढ़ियां बना देता इनकी, अलैहा जिस पर चढ़कर, यजहरून ये चढ़ते हैं, तो इनकी वो सीढ़ियां जिनसे वो बुलंदी पर चढ़ते हैं वो भी मैं जो है चांदी की बना देता। वाले बुयूतहिम, और इनके घरों को, बैत वाहिद है और बुयूत जमा है, अबवाबन उनके दरवाजे, व सुरूरन और तख्त, और इनके वो तख्त, अलैहा यत्ता के ऊन, जिन पर वो तकिए लगाकर बैठते हैं, तो इनके वो तख्त भी मैं बना देता किसके, फिद्दत इन पहले कह दिया चांदी के, और आगे अल्लाह ताला कह रहे हैं वह ज़ुख़रूफ़ा, और सोने के। अब आप देखें कि यहाँ पर जो है अल्लाह ताला ने जिक्र किया है कि मुझे जो है वो दुनिया की जो दौलत है इसकी तो कोई भी परवाह नहीं है, मुझे तो इससे जो है वो बेनियाजी है, ज़र्रा सी भी मुझे इसकी परवाह नहीं है। अगर जो है मुझे इस बात का डर ना होता कि सारे लोग दीन को छोड़ देंगे, यानी उनके लिए ये बात जो है वो आजमाइश बन जाएगी कि जो काफिर हैं उनके पास इतनी दौलत है और इतनी उनके पास दुनिया है, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि मैं क्या करता कि काफिरों के घरों की नंबर वन छतें, नंबर दो वो सीढ़ियाँ जिनसे वो ऊपर चढ़ते हैं अपनी भलाई मंजिलों पर चढ़ते हैं, नंबर तीन उनके वो घर जिनके अंदर जो जो है वो उनके तख्त बिछे हुए हैं जिसपे वो तकिए लगा कर बैठते हैं, और नंबर चार उनके वो दरवाजे, तो वो सारे के सारे मैं बना देता चांदी के, वह ज़ुखरुफा और सोने के। और ज़ुखरुफ जो है ये लफ्ज़ सोने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ज़ुखरुफ। तो मैं इनको जो है वो सोने का बना देता, और मुझे इसका जो है वो ज़रा बराबर ही मुझे इससे जो है वो फ़र्क ना पड़ता। तो यहाँ पर एक तरफ जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बेनियाजी का पता चल रहा है, क्योंकि अहले मक्का जो अमीर थे तो वो ये समझते थे कि हमें अल्लाह ताला ने जो है वो खूब माल और दौलत से नवाजा है, और हम ही अल्लाह के नज़दीक जो है वो पसंदीदा हैं। तो यहाँ पर अल्लाह ताला बता रहे हैं कि किसी के पास दुनिया की दौलत का ज़्यादा होना इस बात की दलील नहीं है कि वो शख्स जो है वो अल्लाह का पसंदीदा है, और वो शख्स जो है वो अल्लाह का बहुत ही प्यारा शख्स है, ये इस बात की दलील नहीं है। बल्कि ये जो दुनिया है, दुनिया तो अल्लाह ताला हर एक को देता है, काफिरों को भी देता है, और काफिरों को तो बहुत ज़्यादा देता है। और इसका ये नहीं मतलब कि जिसको अल्लाह महरूम करता है तो उससे अल्लाह नाराज़ है, और जिसको ज़्यादा देता है तो उससे अल्लाह जो है वो खुश है। बल्कि असल बात यह है कि ये सारा जो कुछ है ये अल्लाह की तरफ से आजमाइश है, और अल्लाह की मर्ज़ी है जिसको चाहे वो ज़्यादा दे और जिसको चाहे अल्लाह जो है वो कम दे। तो यहाँ पर जो है वो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अहम चीज़ बता रहे हैं कि दुनिया अल्लाह की नज़र में इतनी हकीर है, इतनी जलील है, कि अल्लाह ताला कुफार को खूब खूब देता दुनिया, मगर अल्लाह ने इसलिए नहीं ऐसा किया कि इस तरह नेकी और बदी की कश्मकश में अल्लाह ताला ने जो ज़बरदस्त तवाज़ुन रखा है, बैलेंस पैदा किया है, जो दुनिया के दारुल इम्तहान होने के लिए ज़रूरी था, तो वो तबाह हो जाता और लोगों का हक पर कायम रहना नामुमकिन हो जाता। और ये बात जो है ये अल्लाह की मशीयत के ख़िलाफ़ है, तो इसलिए अल्लाह ताला ने इसके अंदर जो है वो एक तवाज़ुन बरपा किया है। तो यहाँ पर जो है यही बात बताई जा रही है। व इन कुल्लु ज़ालिक लम्मा मताउल हयात दुनिया, फिर फरमाया, और नहीं है सब ये मगर दुनिया की जिंदगी का मालो मता। तो जो कुछ भी है ये दुनिया में, ये सोना चांदी और किसी के पास बहुत ही दौलत, तो ये महज दुनिया की जिंदगी का साजो सामान है, मता है। वल आखिरत इंद रब्बिका लिल मुत्तकीन, और आखिरत तेरे रब के यहाँ सिर्फ मुत्तकीन के लिए है। अब यहाँ पे अल्लाह ताला बता रहे हैं कि अगर किसी को दौलत ज़्यादा मिल जाती है, किसी को सोना चांदी ज़्यादा मिल जाता है, तो ये जो है ये कदरों कीमत की मेराज नहीं है, ये नेमत की इंतहा नहीं है। ये चीज़ें तो अल्लाह की निगाह में बहुत ही हकीर हैं, बहुत ही हकीर हैं। तो असल चीज़ जो अल्लाह के नज़दीक बहुत ही पसंदीदा है, जो कि अल्लाह के यहाँ बड़ाई का मयार है, वो है तकवा। तो वो चीज़ तकवा है। तो इससे फिर अमल का क्या उसूल जो है वो सामने आता है। जैसे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, लो कानत दुनिया तज़िनु इंदल्लाही जन्नाह बऊदतिम, अगर दुनिया की अल्लाह के यहाँ इतनी भी हैसियत होती जितनी एक मच्छर के पर की होती है, मा सका मिन्हा काफिरन शुरबत मा, तो अल्लाह ताला किसी काफिर को इस दुनिया से एक घूंट पानी भी पीने को ना देता। सुभान अल्लाह। अब आप देखें कि मच्छर कितना हकीर होता है, और अब मच्छर का पर उससे भी हकीर। तो यहाँ पे अल्लाह ताला कह रहे हैं कि दुनिया की हैसियत मेरे नज़दीक तो एक मच्छर के पर के बराबर भी नहीं है, अगर इतनी भी होती तो फिर मैं किसी काफिर को जो है वो पानी का एक घूंट भी पीने के लिए ना देता। तो जैसे अहले मक्का जो थे वो ये समझ रहे थे कि हम जो हैं वो बड़े ही फजीलत वाले लोग हैं, और हम जो हैं वो मक्का के वादी के और ताइफ की वादी के जो लोग सरदार थे वो समझते थे कि हम बहुत कुछ हैं। तो यहाँ पे अल्लाह ताला ने बहुत ही ज़बरदस्त अंदाज़ में ये बात को सामने रखा है कि अल्लाह के यहाँ असल अहमियत आखरत की है, और आखरत को अल्लाह ताला ने मुत्तकीन के लिए जो है वो मखसूस कर रखा है। अब आप देखिए कि मुत्तकीन किसे कहते हैं, मुत्तकीन कौन होते हैं। आप मुत्तकीन के बारे में जो है वो पहले भी बहुत दफ़ा पढ़ चुकी हैं कि वो काफिया इसका मादा है, और गुनाहों से बचना, अल्लाह की नाफरमानी से बचना, अल्लाह के अजाब से डरना, और फिर गुनाहों को छोड़ देना। मसलन कोई नहीं है और आप गुनाह करने पर कादिर हैं, और अल्लाह का एहसास आए और आपकी आंखों से आंसू बहने शुरू हो जाएं, और आप वो जो गुनाह थी उसको आप छोड़ दें, तो इसे क्या कहते हैं, इसको तकवा कहते हैं। क्योंकि हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से पता चलता है कि अल्लाह ने उस आंख पर जहन्नुम की आग को हराम कर दिया है जो अल्लाह के खौफ से जिससे आंसू बहते हैं, अल्लाह के डर से जिससे आंसू बहते हैं। फिर आप देखें कि अल्लाह के खौफ की वजह से आप दूसरों की गलतियों को माफ़ कर देते हैं, तो इसी को तकवा कहते हैं ना, कि किसी ने आपके साथ बड़ी ज़्यादती की है, जैसे कि अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु से बढ़कर ज़्यादती क्या होगी कि उनकी बीवी के उनकी बेटी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी थी हज़रत आयशा सिद्दीका रज़ी अल्लाह अन्हा, उन पर इल्ज़ाम लगाया गया, और हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस खौफ से कि मेरा रब मुझसे राज़ी हो जाए और अल्लाह मेरे गुनाह माफ़ कर दे, तो आपने जो है वो मिस्ता बिन उसासा उनको उनकी गलती जो थी वो माफ़ कर दी। तो इसे क्या कहते हैं, इसे तकवा कहते हैं। फिर आप देखें कि जो रिश्तेदार हैं वो बहुत सताते हैं, आप जितने जितने उनके हकूक़ अदा करते जाते हैं वो उतने ही पाँव फसारते जाते हैं, वो उतने ही आपके दामन को आकर खींचते हैं, आपको कंधे से पकड़ते हैं, वो उतने ज़्यादा नाराज़ होते हैं, लेकिन अल्लाह के खौफ की वजह से आप उनसे क़ता रहमी नहीं करते बल्कि आप उनके साथ हुस्ने सलूक करते हैं। तो ये किसे कहते हैं, ये जो है वो ये खुदा खौफी को कहते हैं। फिर आप देखें कि आप बच्चों के दरमियान जो हैं वो बच्चों की जब परवरिश करती हैं तो बेटे को बेटी पर फौकियत नहीं देती, जैसे बाज़ लोग बाज़ घरों में बेटे को जो है वो बेटे की होने की वजह से बहुत ज़्यादा अहमियत दी जाती है और नतीजतन वो बहुत ख़राब हो जाता है, बेटी से ही काम करवाना, और मसलन हत्ता के खाना अच्छा बनाया है तो वो भी बेटे को देना, बेटी को ना देना, बेटा बैठा हुआ है और कह रहे हैं कि अच्छा जाओ इसको पानी ला के दो और इसके जूते रखो और इसके लिए ये करो वो करो, तो जैसे कोई बहुत ही जो है ये अलग चीज़ है। तो इससे जो है वो बच्चों की लड़कों की सही तरबियत नहीं होती, तो जहाँ पे बेटियों की तरबियत पर तवज्जो दी जाती है इस बात की ज़रूरत है कि लड़कों की तरबियत पर भी तवज्जो दी जाए, वरना फिर क्या होता है कि जब माँ तो अच्छी है और बाप अच्छा नहीं है तो फिर औलाद की सही तालीम और तरबियत जो है वो नहीं हो सकती। तो खुदा खौफी क्या है कि बेटी भी अल्लाह की तरफ से है और बेटा भी अल्लाह की तरफ से है, और दोनों की तालीम और तरबियत में जो है वो कोई कमी ना उठा कर रखी जाए और दोनों के साथ बराबरी का और मुसावात का सलूक किया जाए। ये भी खुदा खौफी है, आप ये ना करें कि आप जो हैं वो किसी बच्चे को ज़्यादा विरासत में हिस्सा दे दें और किसी को जो है वो कम दे दें। तो ये चीज़ क्या है, ये चीज़ जो है ये भी तकवा के मुनाफी बात है। इसी तरह अगर आपके ग़ुलाम हैं, नौकर चाकर हैं, तो आप इनके दरमियान भी मुसावात करें, इनके दरमियान भी अदल से काम लें, और आप जो है वो तकवा का रवैया इख्तियार करें। और जो तकवा है ना, एक है तकवा की ज़ाहरी शक्ल, और तकवा की ज़ाहरी शक्ल क्या है कि आप जो हैं जैसे आपने स्काफ पहना हुआ है, आपने जिलबाब लिया हुआ है, दाढ़ी रखी हुई है, टखनों से ऊपर शलवार है मर्दों की, ये भी तकवा के सिंबल हैं, ये वैल्यूज़ हैं तकवा की, लेकिन जो है वो सही मुत्तकी शख्स कौन है? जो अपने अकायद में भी अच्छा है और अपने मामलात में भी अच्छा है। क्योंकि स्काफ पहनने का, जिलबाब पहनने का, दाढ़ी रखने का या टखनों से ऊपर शलवार रखने का अजर तो बस आपको खुद मिलेगा ना, कि आप इस्लाम के लिए सरमाया बन रहे हैं, बोझ नहीं बन रहे, आप इस्लाम की पहचान हैं, आप इस्लाम का फ्लैग हैं, आपको देख के लोगों को पता चल रहा है कि ऐसे होते हैं मुस्लिम, ऐसे वो सुन्नतों को जिंदा करते हैं, ऐसे वो कुरान और हदीस पर अमल करते हैं। लेकिन अगर आप किसी से जब मामला करते हैं तो धोखा देते हैं, आप झूठ बोलते हैं, आप वादा खिलाफी करते हैं, आप बदजुबान हैं, आप गुस्सा करते हैं, तो इसको मुत्तकी नहीं कहते। जैसे एक दफ़ा किसी शख्स ने किसी की बहुत तारीफ़ की, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या तुमने उसके साथ सफ़र किया है? उसने कहा कि नहीं। आपने कहा क्या तुमने उसके साथ कोई लेन देन किया? उसने कहा कि नहीं। तो आपने कहा कि फिर तुम्हें कैसे पता चला कि बहुत अच्छा है? तो अगर किसी के बारे में आप जानना चाहते हैं कि वो कैसा है या कैसी है, तो कैसे पता चलेगा? कि जब तक उसके साथ डीलिंग ना की जाए। तो जब डीलिंग की जाती है तो फिर आपको उस बात का अंदाज़ा हो जाता है कि वो शख्स जो है वो कैसा है। तो यहाँ पे भी यही बताया जा रहा है कि आखिरत का जो घर है वो सिर्फ़ मुत्तकीन को मिलेगा। और हम अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि या अल्लाह आप हमें मुत्तकी लोगों में शामिल कर लीजिए, ताकि आखिरत का घर जो है वो हमें मिल सके। और हमें भी साथ साथ अपना जायज़ा भी लेना चाहिए और अपना मुहासबा भी करना चाहिए कि अल्लाह ताला कहते हैं कि मुत्तकी तो इब्राहिम थे, और मुत्तकियों की सिफात आप सूरत अल-अनाम में, सूरत बनी इसराइल में, सूरत अल-फुरक़ान में और बहुत सी सूरतों में आप जगह जगह मुत्तकियों की सिफात जो हैं वो पढ़ चुकी हैं। तो मालो दौलत की फरावानी, मालो दौलत की ज़्यादती, ये अल्लाह के यहाँ फजीलत का मकाम नहीं है, बल्कि अल्लाह के यहाँ जो तकवा का जो मायार है और अल्लाह के यहाँ जो बड़ाई का मकाम है, वो है कि कौन अल्लाह से ज़्यादा डरने वाला है और अपने मामलात को अच्छा रखने वाला है। और ऐसा शख्स तो अपनी मैं को ख़त्म कर देता है, बस उसको कुछ भी याद नहीं रहता सिवाय इसके कि मेरा अल्लाह जो है वो मुझसे राज़ी हो जाए। आयत नंबर 36, वमन याशु अन ज़िक्र रहमानी नुकैद लहू शैतानन फहुआ लहू करीन। जो शख्स रहमान के ज़िक्र से गफलत बरतता है, हम उस पर एक शैतान मुसल्लत कर देते हैं और वो उसका रफ़ीक बन जाता है। अब आप देखिए कि यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं बता रहे हैं कि अल्लाह के ज़िक्र से दूरी जो है वो क्या नुकसान देती है। वो शख्स जो कि वमन याशु, याशु जो है इसका रूट है आयन शीन या, इसके मानी है आंग का देखने से थक जाना। ये सूरत ज्यादा उस वक्त पेश आती है जब आंख उस चमकदार रोशनी का सामना करे जिसको वो गौर से देख ना सके। जैसे आप गाड़ी चलाती हैं, कार चला रही हैं, गाड़ी चलाते वक्त अगर जो है मुखालिफ मुखालिफ सिम से रोशनी आती है तो आप फिर आपको नज़र नहीं आता, धुंधला होने लगता है ना। तो याशु जो है, याशु जो है इसके मानी क्या हैं? आँखों की ऐसी बीमारी जिसको रतून रतूंद कहते हैं, जैसे अंधापन, और जैसे आँखों का चुंधिया जाना कि इंसान सही से देख नहीं पाता। तो यहाँ पे भी यही बात कही जा रही है कि वो शख्स जो आंखें बंद कर लेता है, वो शख्स जो कि गफलत बरतता है, वो जैसे जिसकी आंखें चुधिया जाती हैं, यानी जानबूझकर जो अन जिक्र रहमानी रहमान के जिक्र से गफलत बरतता है, नुकैद लहू शैतानन, तो हम उसके लिए शैतान जो है उसको मुसल्लत कर देते हैं। नुकैद किसे कहते हैं? नुकैद का लफ्ज़ जो है आप पहले पढ़ चुके हैं, काफ या द्वाद। काफ या द्वाद, आपने ये आयत नंबर 25 सूरत हामिम सजदा 24वें पारे में भी आपने पढ़ा था, सूरत नंबर 41 में उसकी आयत नंबर 25 में, वक़ैयदना लहुम कुराना, और काफ या द्वात के मानी क्या थे? अंडे के ऊपर के छिलके को भी कहते हैं, और अंडे के अंदर जो झिल्ली होती है, जो छिलके के साथ चिपकी हुई होती है, उसको भी कहते हैं काफ या द्वाद। तो अच्छा, अब अंडे का छिलका क्या करता है? जैसे छिलका है तो अंदर जो अंडा है वो हर तरफ से उसकी उसको सराउंडिंग किया हुआ होता है, अंडे की हिफाजत करता है, उसके साथ चिपका हुआ होता है, उस पर गालिब होता है, मुकर्रर होता है। तो बिल्कुल इसी तरह से झिल्ली भी अंदर जो है वो उसकी हिफाजत किए हुए होती है। तो इसी तरह नुकैयत का लफ्ज़ जो है ये इस्तेमाल किया जाता है, ये इस्तेमाल किया जाता है किसी पर मुसल्लत कर देना, किसी के साथ चिपका देना, कोई चीज़ किसी के साथ लग जाए। तो जो शख्स रहमान के जिक्र से जो है वो गफलत बरतता है, मसलन अल्लाह ताला ने कुरान को नाजिल किया और अल्लाह की तरफ से जो जिक्र आया है, नसीहत आई है, तो लोग उसे आंखें बंद कर लेते हैं, अपने कानों में उंगलियां ठोंस लेते हैं, सुनी अनसुनी कर देते हैं। तो अल्लाह ताला कहते हैं मुझे भी फिर कोई परवाह नहीं है, नुकैयत लहू शैतानन, हम उस पर एक शैतान को चस्पा कर देते हैं, एक शैतान जो है वो उसके साथ लगा देते हैं। फहुआ लहू करीनुन, वो उसका रफीक बन जाता है। और आपको पता ही है कि कर्न किसे कहते हैं? कर्न ऐसी रस्सी को कहते हैं जिससे दो ऊंट बांधे जाएं। हम उम्र हम ख्याल साथी को भी कहते हैं, जैसे जो उम्र में एक जैसे हों, बहादुरी में या जमाने में किसी भी लिहाज से कोई निस्बत पाई जाती हो। तो बहरहाल शैतान उसका रफीक बन जाता है। और करीन का लफ्ज़ कुरान में ज़्यादातर बुरे साथी के लिए आया है। ये शैतान क्या करता है? वह इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस्सबीली व यहसबून अन्नहुम मुहतदून। और यहाँ पे शैतान लफ्ज़ जो है ये इस्म जिन्स इस्तेमाल हुआ है। और ये शैतान फिर क्या करते हैं? ये शैतीन वह इन्नहुम लयसुद्दूनहुम अनिस्सबीली, ये ऐसे लोगों को राह रास्त पर आने से रोकते हैं, खुद रुकते हैं, दूसरों को रोकते हैं। सद्दा यसुद्दू ये लाजिम और मुतद्दी है। व यहसबून अन्नहुम मुहतदून, और वो अपनी जगह ये समझते हैं कि हम ठीक जा रहे हैं, गलत काम कर रहे होते हैं, लेकिन ये समझ रहे होते हैं कि हम जो कुछ कर रहे हैं ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और ये शैतान इंसान भी हो सकता है और जिन भी। और इनकी बुराई क्या होती है? कि बुरा काम कर रहे होते हैं और उसको अच्छा समझते हैं। और ये बड़े ही अफसोस की बात है कि अल्लाह की याद से गाफिल होने के बाद अब हर वक्त बुराइयों से दूर रहते हैं और बुराइयां करते हैं और समझते हैं कि हम अच्छा काम कर रहे हैं, हम ठीक काम कर रहे हैं, और ये धोखा है। और आप देखें कि अब आप सोचें कि मेरी दोस्ती जो है वो किन लोगों से है और मैंने किन लोगों को दोस्त बनाया है, और मेरे दोस्त जो हैं कहीं ऐसा तो नहीं कि बुरे लोग हैं और अपनी दोस्ती की वजह से मैं बुराई की तरफ जो है वो जा रही हूँ। क्योंकि यहाँ पर भी जो है वो सोबते सवाले की अहमियत बताई जा रही है कि जो कुरान को अपना दोस्त नहीं बनाता तो अल्लाह ताला भी फिर उसको शैतान के सपुर्द कर देते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें जो है वो सोहबते सवाले इख्तियार करनी चाहिए। और हकीकत में सबसे बड़ा मुफलिस वो है जिसका कोई अच्छा नेक दोस्त ना हो, क्योंकि नेक दोस्त, अच्छे दोस्त जो है वो इस ज़िंदगी का सबसे बड़ा सहारा है और अल्लाह का इनाम है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मोमिन सरापाए उल्फत और मोहब्बत है। और इस आदमी में सिरे से कोई खैर खूबी नहीं है जो ना तो दूसरों से मोहब्बत करे और ना दूसरे ही इससे मोहब्बत करें। तो आइए सोहबते सवाले इख्तियार करें। नहीं बेगानगी अच्छी रफीके राहे मंजिल से, नहीं बेगानगी अच्छी रफीके राहे मंजिल से, बहुत हैं पुरखतर राहें कोई गमखार पैदा कर। हत्ता इज़ा जा अना क़ाला या लैत बैनी व बैना का बोदल मशरिक़ैनी फ़बेसल क़रीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कहते हैं आखिरकार जब ये शख्स हमारे पास पहुँचेगा तो अपने शैतान से कहेगा कि या लैता काश बेनी व बेना का, काश मेरे और तुम्हारे दरमियान बोदा दूरी होती, बोध होता, अल मशरिकैनी मशरिक और मगरिब का, फबेसल करीन तू तो बदतरीन साथी निकला, तू बहुत ही बुरा साथी निकला। तो मशरिकैन से मुराद मशरिक मगरिब है, या फिर जो है वो दो मशरिक कहकर मशरिक और मगरिब मुराद लिया गया है। जैसे मशरिकैन तस्निया है ना, जैसे मशरिक और मगरिब मुराद है। तो बाज़ लोग कहते हैं कि काफिर कयामत वाले दिन कहेगा कि ऐ शैतान तू बहुत बुरा साथी है, लेकिन उस दिन उसके इस एतराफ़ करने का क्या फ़ायदा कि उस दिन इंसान ये एतराफ़ करेगा कि काश के तू मुझसे इतना दूर होता, इतना तेरे और मेरे दरमियान फासला होता जितना मशरिक और मगरिब के दरमियान फासला है। वलयनफाकुमुल यौमा, उस वक्त उनसे कहा जाएगा कि आज तुमको नफ़ा नहीं मिलेगा, इज़ ज़लम तुम, जबकि तुम जुल्म कर चुके, यानी तुमने बुरी दोस्तियाँ की, तुमने कुरान को दोस्त ना बनाया, तुमने नेक लोगों को दोस्त ना बनाया, आज तुम्हें कोई फ़ायदा नहीं होगा। वलयनफाकुमुल यौमा, हरगिज़ तुम्हें नफ़ा नहीं देगा आज का दिन, आज कोई चीज़ तुम्हें नफ़ा नहीं दे सकती, इज़ ज़लम तुम, जबकि तुम जुल्म कर चुके, कि कुरान से मुंह मोड़ा और अच्छे लोगों से मुंह मोड़ा, नेक लोगों से, अन्नकुम फिल अजाब मुश्तरिकून, तो तुम और तुम्हारे शयातीन अजाब में मुश्तरिक हैं। अन्नकुम यानी यहाँ पे बुरे दोस्त और उनके जो बुरे शयातीन साथी हैं, फिल अजाबी गुनाहों में, गुनाहों में एक जैसे थे, अब अजाब में भी साथ हैं, मुश्तरिकून मुश्तरिक हैं। तो प्यारी बहनों, यहाँ पे अमल का उसूल क्या निकलता है? नंबर एक, कुरान से दोस्ती की जाए। नंबर दो, सोबते सहले इख्तियार की जाए। नंबर तीन, दुनिया की बजाय आखिरत को अपना मुतमईन नजर बनाया जाए। वल आखिरतु इंद रब्बिक लिल मुत्तकीन। तो ये राज किसी को नहीं मालूम कि मोमिन कारी नजर आता है, हकीकत में है कुरान। तो कुरान की महक हमारे ख्यालात, अफकार, अमाल और अतवार में नजर आनी चाहिए। अब सूरत यूनुस में पढ़ चुकी हैं, फबिज़ालिका फलयफ़रहू हुवा खैरुम मिम्मा यजमाउन। तो कुरान के हासिल करने पर, कुरान के हासिल करने पर लोगों को खुशियाँ मनानी चाहिए, और ये वो चीज़ है कि जिसके जमा करने पर लोगों को खुश होना चाहिए। और दुनिया में लोग जो कुछ जमा करते हैं उनमें सबसे बेहतर जो है वो कुरान की नेमत है। यहाँ पे एक और बात मैं आपसे कहती चलूँ कि सोबते सवाले के साथ नेक नामी भी बहुत ज़रूरी है। बाज़ औक़ात लोग बुरे नहीं होते, लेकिन जब वो बुरे लोगों के साथ बैठते हैं तो वो भी बदनाम हो जाते हैं। तो इस बात की ज़रूरत है कि नेकी भी इख्तियार की जाए, नेक सोबत भी इख्तियार की जाए, और फिर अल्लाह ताला से नेक नामी की भी दुआ की जाए। अफा अंता तुस्मिउ सुम्मा औ तहदिल उमिया वमन काना फी दलालिम मुबीन। अब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा जा रहा है कि अब क्या ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तुम उन बहरों को सुनाओगे ओ ताहदिल उमिया, या फिर अंधों को हदायत दोगे, वमन काना फी दलालिम मुबीन, या उन लोगों को जो सिरी गुमराही में पड़े हुए लोग हैं। तो अब यहाँ पे तीन मिसालें सामने रखी गई हैं कि आप बहरे तो सुनना नहीं चाहते, आप उनको सुनाना चाहते हैं, क्योंकि कुफर करने वाले तो सुनना नहीं चाहते थे, आप अंधों को राह रास्त दिखाना चाहते हैं, या वो लोग जो सरी गुमराहे पड़े हुए हैं आप उनको नेकी की तरफ लाना चाहते हैं। तो वो लोग जो हकायक से आंखें बंद कर लें, जो कानों में उंगलियां ठोंस लें, और जो गुमराही के अंदर जो है वो भटकना चाहें, तो आप उनको हदायत देने के लिए उनके गम में अपने आप को क्यों घुलाते हैं? बस उनको रहने दे जिस हाल में भी हैं। फ़इम्मा नज़हबन्ना कबिका फ़इन्ना मिन्हुम मुंतक़िमून। अब आप देखें कि यहाँ पर जो है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि फ़इम्मा नज़हबन्ना, बस अगर हम ले जाएं आपको, बिका तुझको, बस अगर हम ज़रूर बज़रूर ले जाएं तुझको, फ़इन्ना मिन्हुम मुंतक़िमून, तो बेशक हम इनसे इंतकाम लेने वाले हैं। हमें इनको तो सज़ा देनी है, खा तुम्हें दुनिया से उठा ले, यानी अब हमारी मर्जी है कि फ़ाइमा नज़ह बन्ना बिका, कि चाहे आपको दुनिया से उठा ले। और दुनिया से जो उठाना है इसका मतलब क्या है कि या तो आपको मौत आ जाए या ये कि आपको मक्का से निकाल लिया जाए, आप कहीं और हिजरत कर जाएं। लेकिन जो भी ये कुफ्र और शिर्क करने वाले हैं इनको तो हमें सज़ा देनी है। फ़इन्ना मिन्हुम मुन्तक़िमून, और आप देखें कि यहाँ पे फ़इन्ना पस बेशक हम, हमें इनको ज़रूर सज़ा देनी है। ओ नुरियन्ना कल्लज़ी, या फिर हम ज़रूर बसरूर दिखा दें तुझको, या हम दिखाएं तुझको अल्लज़ी, वो जो वअदनाहुम, जो वादा किया है इनसे, फ़इन्ना अलैहिम मुक्तदिरून, तो बेशक हम इन पर कुदरत रखने वाले हैं। या तुमको आंखों से इनका वो अंजाम दिखा दें जिसका हमने इनसे वादा किया है, हमें इन पर पूरी कुदरत हासिल है। यानी दुनिया ही में अगर हमारी ये मशीयत हुई कि हम दुनिया में ही इनको जो है वो अजाब दे दें, जो ये अजाब मांगते हैं, जो ये नाफरमानी करते हैं, तो हमने वादा किया है ना कि इन पर हमारा अजाब आ सकता है, तो हमें तो पूरी कुदरत हासिल है कि हम ये कहीं बैठे हों महफिल में कुफर और शिर्क कर रहे हों और मजाक उड़ा रहे हों और अल्लाह का अजाब आए और इनको तबाह व बर्बाद कर दे। और नुरियन्नकल्लज़ी वअदनाहुम, या फिर हम जो हैं आंखों से इनको वो अंजाम दिखा दें जिनका हमने इनसे वादा किया है, फ़इन्ना अलैहिम मुक्तदिरून, हमें इन पर पूरी कुदरत हासिल है। आपका क्या काम बनता है, फस्तमसिक, बस आप मजबूती से पकड़ कर रखें, बिल्लज़ी उहिया इलैक, जो वही आपकी तरफ भेजी गई है, इन्नका अला सिराति मुस्तकीम, यकीनन तुम सीधे रास्ते पर हो। अब यहाँ पे रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तसल्ली दी जा रही है कि आप फिक्र ना करें कि इस्लाम गालिब आता है या नहीं, बस आपका काम यह है कि नतायज से बेपरवाह होकर अपना काम करते चले जाएं, और जो है वो रिज़ल्ट निकालना ये अल्लाह का काम है कि जैसा चाहे वो रिज़ल्ट जो है वो निकाले। व इन्नहु लज़िक्रुल्लका वले कौमिका वसौफ़तु सलून। अब यहाँ पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो हैं कह रहे हैं व इन्नहु लज़िक्रुल्लका वले कौमिका, और बेशक वो लज़िक्रुन, अलबत्ता ज़िक्र है, लका तेरे लिए, वले कौमिका और तेरी कौम के लिए। और यहाँ पे ज़िक्र से क्या मुराद है, कुरान मजीद। और हकीकत यह है कि ये किताब तुम्हारे लिए और तुम्हारी कौम के लिए एक बहुत बड़ा शर्फ है, और यकीनन ये कुरान मजीद खुद आपके लिए और आपकी कौम के लिए नसीहत है। वसौफ़ा तुसअलून, और अनकरीब तुम लोगों को इसकी जवाबदेही करनी होगी कि अल्लाह के दरबार में जब तुम्हारी पेशी होगी तो फिर अल्लाह तुमसे ज़रूर पूछेगा कि तुमने जो है वो नबी की जो पुकार थी उसका क्या जवाब दिया, तुमने जो है वो नबी की जो दावत थी तुमने उसकी पैरवी क्यों ना की। अब आप देखिए कि अब यहाँ पर जो कहा जा रहा है कि ये कुरान मजीद आपके लिए और आपकी कौम के लिए एक बहुत बड़ा शर्फ है, तो इसके क्या मानी है। तो असल में वैसे तो कुरान मजीद पूरी दुनिया के लिए है ना, वमा हुआ इल्ला ज़िक्रुलिल आलमीन, आप सूरत कलम आयत 52 में भी है, सूरत अश्शुरा आयत 214, व अनज़िर अशीरतकल अक़रबीन, के करीबी रिश्तेदारों को डराइए। तो तबलीग की इब्तदा रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने ख़ानदान से और मक्का से और अहले अरब से करनी थी, और फिर आगे पूरा फैलाना था ना। तो फिर इसके माने क्या हैं कि ये आपके लिए भी बहुत बड़ी सआदत की बात है और आपकी कौम के लिए भी, वरना इसको तो पूरी दुनिया में जो है वो फैलाना था ना। और अगर अहले अरब और मक्का वाले आपका साथ देते तो वो दुनिया पर फजीलत और बरतरी हासिल कर सकते थे, दुनिया में भी उन्हें जो है वो नेक नामी मिलती और आखरत में कुरान पर अमल करने की वजह से अमले सवाले के ज़रिए खुद ब खुद उनको नेक नामी जो है वो मिलती चली जाती। तो हकीकत यह है कि आज भी कुरान मेरे और आपके लिए जो है बड़ी सआदत की बात है मुसलमानों के लिए, कुरान बड़ी सआदत की बात है। लेकिन ज़रूरत है इस बात की कि कुरान मजीद जो है इसको अपनी ज़िंदगी का मकसद बनाया जाए और कुरान मजीद के ज़ेरे साया अपने अमलों को बदला जाए। क्योंकि ऊँटों की नकेलें थामने वाले, मक्का की गलियों में ऊँटों को चराने वाले, वो जो तहजीब और तमद्दुन से ना आशना थे, उनको दुनिया का इमाम किसने बनाया? कुरान ने। और अगर आज मुसलमान जलील और ख्वार हैं तो इसकी वजह यह है कि मुसलमानों ने कुरान को छोड़ दिया है। और अगर आज भी मुसलमान इसको अपनाते हैं तो मुसलमानों के हालात जो हैं वो बदल सकते हैं। वसल मन अरसलना मिन कबलिका मिन रसूलिना, अल्लाह ताला कह रहे हैं कि वसल, आप सवाल कीजिए, आप पूछिए, मन अरसलना के जो भेजे हैं हमने, मिन कबले का आपसे पहले, मिन रसूलिना अपने रसूलों में से, कि आपसे पहले जितने रसूल भी हमने भेजे थे उन सब से पूछ कर देख लो, अजअलना मिन दूनिर रहमानी आलिहा तई या युबदून, अजअलना मिन दूनिर रहमानी आलिहा तई युबदून, क्या हमने खुदाए रहमान के सिवा कुछ दूसरे माबूद भी मुकर्रर किए थे कि उनकी बंदगी की जाए? तो फिर कैसे लोगों ने शिर्क करना शुरू कर दिया? तो रसूलों से पूछने का मतलब क्या है कि उनकी लाई हुई किताबों से मालूम करो कि कहीं भी किसी किताब में या किसी रसूल ने ये कहा था कि शिर्क कर लिया जाए, तो फिर लोगों ने शिर्क कैसे करना शुरू किया? फिर आप देखिए कि आयत नंबर 46 से लेकर 65 तक इसमें अंबिया में से दो नबियों का जिक्र किया गया है, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, और बताया जा रहा है कि उन्होंने भी दीने तौहीद की दावत दी थी, और बताया जा रहा है। फिर आप देखें कि आयत नंबर 46 से लेकर 65 तक दो नबियों का जिक्र किया जा रहा है, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम, और उनकी दावत का हवाला देकर बताया जा रहा है कि इन्होंने दीने तौहीद की दावत दी थी। अब आप देखें कि आयत नंबर 46 से मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू होता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कौम जिस तरह से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को झुटला रही थी, तो मूसा अलैहिस्सलाम का जिक्र इसलिए किया जा रहा है कि मूसा अलैहिस्सलाम भी बड़े उलूल अज़्म पैगम्बरों में से थे, उनकी कौम ने उन्हें बुरी तरह झुटलाया और मूसा अलैहिस्सलाम ने बड़े सब्र तहम्मुल का मुजाहरा किया। तो यहाँ पे भी जो है वो यही कहा जा रहा है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी और मुसलमान भी क्या करें, कि एक तरफ उनके लिए तसल्ली का पहलू है कि अल्लाह के बंदों को बहुत सी आजमाइशों में से गुजरना पड़ता है, और वो क्या करते हैं, सब्र से काम लेते हैं। तो ऐ मुसलमानों और ऐ प्यारे रसूल, आप भी कुफारे मक्का की अजियतों पर दिल बर्दाश्ता ना हो, सब्र और हौसले से काम लें, बिल आखिर फतह आपकी होगी जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम की फतह हुई थी और फिरौन और उसके दरबारी हार गए थे। वलकद अरसलना मूसा बि आयातिना इला फिरऔना व मलाइही, हमने मूसा अलैहिस्सलाम को अपनी निशानियों के साथ फिरौन और उसकी सल्तनत के सरदारों के पास भेजा। मला जो है, मला के मानी क्या है, मला का लफ्ज़ आप पहले भी पढ़ चुकी हैं और इसके मानी है दरबारियों के, भरे हुए को कहते हैं ना, और सरदार और दरबारियों के लिए लफ्ज़ इस्तेमाल होता है। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन और उसके दरबारियों को क्या कहा था, फ़क़ाला इन्नी रसूलु रब्बिल आलमीन, उसने जाकर कहा कि मैं रब्बुल आलमीन का रसूल हूँ। फ़लम्मा जाअहुम बि आयातिना, फिर जब उसने हमारी निशानियाँ जो हैं वो इनके सामने पेश की, यानी इनके सामने लेकर आया, इज़ा हुम मिन्हा यदहकून, तो वो ठट्ठे मारने लगे। कौन सी निशानियाँ मुराद हैं? वो बहुत सी निशानियां जो आप पहले पढ़ चुकी हैं, जैसे तूफान, टड्डी दिल, जुएं, मेंढक, खून वगैरह, तो यके बाद दीगरे उन्होंने कई निशानियां दिखाई थी। सूरत अल आराफ आयत 133 से 135 आप सामने रखें, और बाद में आने वाली हर निशानी पहली निशानी से बड़ी चढ़ी मालूम होती, ताकि मूसा अलैहिस्सलाम की सदाकत का उनको पता चल जाए, लेकिन वो इसका मजाक उड़ाते, हंसते। वमा नुरीहिम मिन आयतिन, अल्लाह ताला फरमाते हैं के और नहीं हम दिखाते थे इनको कोई निशानी, इल्ला हिया अकबारु मिन उख्तिहा, मगर वो बड़ी भी होती थी अपनी बहन से यानी दूसरी निशानी से। आप इसका तर्जमा ऐसे कर सकती हैं कि अल्लाह ताला ने जो निशानियां जो थीं वो मूसा अलैहिस्सलाम के ज़रिए पेश की थीं, जो उन्हें वो दिखाते थे, तो वो दूसरी से बड़ी चढ़ी होती थी, यानी पहली से बढ़ चढ़ कर थी। वाखज़नाहुम बिल अज़ाबी लअल्लहुम यरजिऊन, और हमने उनको अज़ाब में धर लिया ताकि वो अपनी रविश से बाज आ जाए। तो चूंकि वो ईमान नहीं लाते थे, यानी हर निशानी के बाद वो इनकार करते थे, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि उनके इनकार करने की वजह से फिर हमने क्या किया कि हमने उनको अजाब में पकड़ लिया, लालम यरजेउन, ताकि अपनी वो इस रविश से बाज आ जाए। वकालू, और वो कहने लगे, यानी हर अजाब के मौके पे वो कहते थे, या अय्युहस साहिरू, ए साहिर, उदू लना रब्बा का बिमा अहदा इंदक, कि अपने रब से दुआ कीजिए उस मनसब की बिना पर जो तुझे अपने रब की तरफ से हासिल है। यानी जब निशानी देखते इनकार करते अल्लाह अजाब भेजता, जब अजाब भेजता तो मूसा अलैहिस्सलाम से कहते कि अपने रब से दुआ करें कि हमारे इस अजाब को हमसे दूर कर दे। और साहिर जो है, मुफस्सरीन कहते हैं कि उस जमाने में आलिम फाजिल शख्स को जादूगर कह के पुकारा जाता था। तो वो ये समझते थे कि मूसा अलैहिस्सलाम की जो निशानियां हैं वो मोजज़ात नहीं हैं, बल्कि ये जादूगर का फन है, उसका कमाल है। तो इसलिए उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम को जादूगर के लफ्ज से याद किया। मसलन जब उन पर जो है वो जुएं और सुरसरियां फैल गईं और सख्त तकलीफ में मुब्तिला हुए, उनके गलों के गोदाम तबाह हो गए, तो उन्होंने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा कि अब अपने रब से दरख्वास्त करो कि हमारी मुसीबत को हटा दे। जब दुआ की तो वो हट गई, फिर वो नाफरमान बन गए। अब मेंढकों का सैलाब आ गया, पूरी आबादी को तंग करके रख दिया। अब फिर कहने लगे कि मूसा, ऐ जादूगर, अपने अल्लाह से दुआ करो कि हमारी इस मुसीबत को दूर कर दे। अब फिर वो मुसीबत हट गई तो अब खून का अजाब उन पर रोनमा हो गया, नहरें, कुएं, चश्मे, तालाब, हौज, पानी सबका खून में तब्दील हो गया, मछलियां मर गईं, हर जगह बदबू, लोग पानी को तरस गए। अब फिर मूसा अलैहिस्सलाम से कहने लगे कि अपने रब से दुआ करो कि ये अजाब खून का हमसे जो है वो हटा दे। तो ये ऐसे होता था कि जो ही अजाब वो इनकार करते थे तो अजाब आता था, अजाब आता था तो दुआओं की दरख्वास्त करते थे, और जब वो अजाब हट जाता था तो फिर वो भूल जाते थे। तो यहाँ पे भी उनकी यही रविश जो है वो बयान की जा रही है कि इनकी ज़रा हठधर्मी तो देखें। कि मूसा अलैहिस्सलाम से कहते हैं कि ऐ मूसा, ऐ जादूगर, अपने रब की तरफ से जो मनसब तुझे हासिल है, बीमा अहदा इंदक, और अहदा इंदक जो है, अहदा यानी बसबब उसके जो अहदा अहद किया इसने इंदा का तुझसे, यानी तेरे रब ने जो तुझसे वादा किया हुआ है कि तेरी दुआएं कबूल करेगा और बड़ा तेरा मर्तबा मकाम है, तू अल्लाह का बड़ा चुना हुआ है, तो फिर दुआ कर हमारी ये मुसीबत हट जाए। इन्ना ला मुहतदून, हम जरूर राह रास्त में आ जाएंगे। फलम्मा कशफना अन्हुम अज़ाबा, और जू ही हम उनसे अजाब हटा देते, इज़ा हुम यनकुसून, तो वो अपनी बात से फिर जाते थे। यूं ही अजाब हटता तो फौरन जो थे वो इनकार करने वाले बन जाते थे। तो नकसा का मतलब होता है वादे को तोड़ देना। वनादा फिरौन, और एक रोज फिरौन ने पुकारा, फी कौम ही, अपनी कौम के दरमियान, काला या कौमी, उसने कहा ए लोगो, ए मेरी कौम के लोगो, अलैसा ली मुल्कु मिस्रा व हाज़िहिल अनहार, क्या मिस्र की बादशाही मेरी नहीं है और ये नहरें, तजरी मिन तहती, मेरे नीचे नहीं बह रही, अफला तुबसिरून, क्या तुम लोगों को नजर नहीं आता, अम अना खैरु मिन हाज़ल लज़ी हुआ महीन वला यकादु युबीन, मैं बेहतर हूं या ये शख्स जो जलीलो ख्वार है, नंबर दो, और अपनी बात भी खोलकर बयान नहीं कर सकता। तो फिरौन ने देखा कि मूसा अलैहिस्सलाम जो अपने मोजज़ात पेश कर रहे हैं, अपनी निशानियां पेश कर रहे हैं, और एक से एक बढ़कर निशानी है, तो फिरौन को खतरा लहक हुआ कि कहीं मेरी कौम मूसा की तरफ मायल ना हो जाए। तो उसने अपनी शिकस्त को छुपाने के लिए, कौम को धोखा देने के लिए एक नई चाल चली, अपने इख्तियार और इक्तदार के हवाले से कौम पर रोब डालना चाहा। तो नंबर एक उसने ये कहा कि ये बताओ कि मिस्र की बादशाही किसकी है, ये नहरें किसके नीचे बहती हैं, ये सब मेरी है ना, अब बताओ कि मैं बेहतर हूं या ये जलील और हकीर शख्स। क्योंकि मूसा अलैहिस्सलाम की तो कोई ऐसी हैसियत नहीं थी जैसे कि फिरौन के बादशाह की थी। दूसरी बात उसने कही कि वला यकादु युबीन, जो बात भी वाजे करके नहीं कर सकता। तो यहाँ पे जो ये बात है कि अपनी बात भी खोल कर बयान नहीं कर सकता, तो आपने सूरत तौहा में भी पढ़ा था ना कि मूसा अलैहिस्सलाम जो थे उन्होंने कहा था कि मैं सही से खुलकर बात नहीं कर सकता, तो उन्होंने रब्बी शराहली सदरी वाली दुआ मांगी थी। तो इसका ये नहीं मतलब था कि मूसा अलैहिस्सलाम की जबान में कोई लुकनत थी, ऐसा नहीं है, ये गलत है। बल्कि यानी असल बात क्या थी कि एक जो कमाल दर्जे की जो है वो तकरीर की जो सलाहियत होती है, मूसा अलैहिस्सलाम उसमें कमी महसूस करते थे, तो इसलिए उन्होंने वो दुआ मांगी थी जो सूरह तौहा की आयत नंबर 27 से 36 तक है, रब्बी इशरह ली सदरी वाली। तो यहाँ पे भी उसी का जिक्र है कि अपनी बात भी खोल कर बयान नहीं कर सकता, यानी बहुत ज़्यादा तकरीरी जबान नहीं है। फलौला उल्किया लही अस्विरतु मिन ज़हबिन औ जाअ माहुल मलाइकतु मुक्तरनीन। अब फिरौन कहता है फलौला उल्किया लही अस्विरतुन, फिर ऐसा क्यों ना हुआ कि इस पर कंगन उतारे जाते। अस्विरतुन इसका रूट है सीन वो रा और सिवार, सिवार वाहिद है और अस्विरा जमा है, और ये कंगनों को कहते हैं। सूरत का रूट भी यही है। जैसे आप देखें कि कंगन जो होते हैं या चूड़ियां होती हैं वो बाजू के गिर्द दीवार की तरह गोल होती है ना, बिल्कुल इसी तरह दीवारें जो हैं वो घर की सराउंडिंग किए हुए होती हैं, और इसी तरह सूरत जो है, हर सूरत हर उसके अंदर के मजामीन के लिए उसकी हैसियत भी दीवार की है, फसील की है, तो इसलिए उसको सूरत कहा जाता है। तो बहरहाल फिरौन ने कहा कि इस पर सोने के कंगन क्यों नहीं उतारे गए, ज़हब सोने को कहते हैं। नंबर दो उसने कहा औजा माहुल मलाइका तू, या फरिश्ते इसके साथ उतरते, मुक्तरनीन, मुक्तरनीन दस्ता बनाकर। मुक्तरनीन जो है आप देखिए कि इसका मादा क्या है, इसका मादा भी काफ रा नून है मुक्तरनीन का, और जिस तरह कर्ण होता है ना कि एक रस्सी से दो ऊंटों को बांध देना, और इसी तरह जो है मुक्तरनीन है कि जैसे बहुत से लोग जो हैं, बहुत से फरिश्ते जो हैं वो इकट्ठे होकर जो है वो आते, तो मुक्तरनीन। मुक्तरनीन के फिर मानी क्या है कि फरिश्तों के परे के परे, यानी बहुत से फरिश्ते इकट्ठे जुड़कर जो है वो आते, यानी परे के परे, दस्ते का दस्ता। तो मुक्तरनीन के जो फरिश्ते हैं उनका दस्ता जो है वो इनके साथ क्यों नहीं आया, यानी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ फरिश्तों का दस्ता नाजिल क्यों नहीं हुआ। तो बस आपने कर्ण जैसे एक रस्सी से दो को बांधा जाता है, तो उसी से याद रखना है कि परा बांधने वाले, मिलने वाले, साथ साथ रहने वाले। तो फरिश्ते जो है वो होते जो कि मूसा अलैहिस्सलाम के साथ साथ होते। फस्तखफ्फा कौमहू, उसने अपनी कौम को हल्का समझा। फअता ऊ, और उन्होंने उसकी अतात की। इन्नहुम कानू कौमन फासिकीन, आखिरकार हकीकत बात क्या थी कि दर हकीकत वो थे ही फासिक लोग। तो फस्तखफ्फा अकल का कमजोर होना, बेवकूफ होना, यानी उसने अपनी कौम की अकल को हल्का समझा। फिरौन ने अपनी कौम की अकल को हल्का समझा या कर दिया। तो फिरौन क्या चाहता था कि उसकी जहालत पर उसकी कौम कायम रहे, तो उसने अपनी कौम को बेवकूफ़ बनाना चाहा कि मैं ही खुदा हूँ, मैं ही बढ़िया चीज़ हूँ, तुम मेरे पीछे चलो, मूसा अलैहिस्सलाम की कोई हैसियत नहीं, ये तो बस सब ऐसी बातें हैं, ये तो जादूगर वगैरह। तो कौम को उसने धोखा दिया और चाले चली फअताऊ, और कौम के लोग जो थे वो उसके पीछे चल पड़े, उसके पीछे लग गई कौम। क्यों? वो दर हकीकत फासिक लोग थे। फलम्मा आसफूना, यहाँ पे आसफूना का जो लफ्ज़ है हमजा सीन फा, ये हुजन और गुस्से के मजमुए को कहते हैं, जज्बा इंतकाम से दिल का जोश मारना। तो आसफूना जो है, मुफस्सरीन ने इसके मानी, इसका तर्जुमा किया है, हमको नाराज कर दिया, हमको गुस्सा दिलाया। तो अल्लाह ताला कहते हैं कि आखिरकार जब उन्होंने हमें गुस्सा दिलाया, इंतकमना मिनहुम, तो हमने इनसे इंतकाम लिया। यानी किसने गुस्सा दिलाया? फिरौन ने और उसके दरबारियों ने हमें गुस्सा दिलाया, तो हमने इनसे इंतकाम लिया। फअग्रकनाहुम अजमाइन, और इन सबको इकट्ठा करके हमने गर्क कर दिया। फजअलनाहुम सलफ़ों व मसलल लिल आखिरीन, और बाद वालों के लिए पेश रो और नमूना इबरत बना कर रख दिया। तो यहां पर जो है अल्लाह ताला क्या बता रहे हैं कि फिरौन और उसके साथियों ने जब पैगंबर को झुठलाया, उसका इनकार किया, और हर निशानी आने पर वो क्या करते थे कि वादा करते कि ईमान लाएंगे और फिर झुठलाते थे, तो अल्लाह ताला ने भी उनको जो है फिर क्या सजा दी उनकी तकजीब की और उनके झुठलाने की, कि अल्लाह ताला ने उनको तबाहो बर्बाद करके रख दिया। तो ये जो मक्का वाले हैं वो मूसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़े से इबरत हासिल क्यों नहीं करते कि मूसा अलैहिस्सलाम को जिस तरह कौम ने झुटलाया और उनका हाल हुआ झुटलाने वालों का, कि अजाब उन पर आया, तो अहले मक्का जो है अगर इन्होंने अपनी रविश को ना बदला तो ये भी अजाब का शिकार जो है वो हो सकते हैं। तो इन्हें फिर क्या करना चाहिए? अल्लाह के अजाब से डरना चाहिए, वरना फिर अल्लाह के अजाब का कोड़ा जो है वो इन इन पर बरस कर रहेगा। तो इस सबक से भी हमें अमल का क्या उसूल मिलता है, क्या बातें हमारे सामने आती हैं? इसमें पहली बात तो ये पता चलती है कि जब भी कोई रसूल जो है वो भेजा गया तो कौम के लोगों ने उसे झुठलाया। नंबर दो, रसूल का काम जो है वो दावत देना है, ज़बरदस्ती वो लोगों को तब्दील नहीं कर सकते। नंबर तीन, कौमों के झुठलाने पर रसूलों ने सब्र व तहम्मुल से काम लिया। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आप पर ईमान लाने वाले मुसलमानों से क्या कहा जा रहा है कि आप भी जो है वो इनकार करने वालों के मुकाबले में फिर क्या करें कि आप जो है वो सब्र व तहम्मुल से काम लें। तो आपकी जो रविश है वो सब्र व तहम्मुल की रविश होनी चाहिए। फिर इसके बाद एक और अहम उसूल जो हमें पता चलता है, और वो ये है कि क्या करना चाहिए? कुरान मजीद से दोस्ती करनी चाहिए, सोबते सवाले इख्तियार करनी चाहिए, और तकवा की रविश पर चलना चाहिए, और शैतान को और शैतान सिफ्त इंसानों को अपना करीन, अपना दोस्त नहीं बनाना चाहिए। और फिर जो शख्स अपनी इस्लाह खुद ना चाहे, पैगंबर भी उसकी इस्लाह नहीं कर सकते। तो आइए हम अपनी आँखों को खोलें, अपने कानों को वा करें, अपने दिल की खिड़कियाँ खोलें, दिलो दिमाग की, और कुरान मजीद से हदायत हासिल करें, क्योंकि ये कुरान मजीद कयामत के दिन आपके हक में या आपके खिलाफ गवाही देगा। और दूसरी बात, हमें इस बात पर यकीन होना चाहिए कि कुरान मजीद पर अगर हम अमल करेंगे तो इसमें हमारे लिए और तमाम मुसलमानों के लिए बड़े ही शर्फ की बात है। इसमें मेरे लिए और आपके लिए दुनिया में भी इज्जत है और आखरत में भी हमें इससे जो है वो इज्जत और एक आला मकाम जो है वो मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबको अमल करने वाला बनाए, हम सबसे राज़ी हो जाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।